अब आगे 170 आयत पे चल के देखिए कि रसूल के नाते से कुछ बातें होंगी कि अल्लाह के नबियों ने क्या काम किया। आयत 170, या यूहन्नास, ए लोगो, किसको कहा जा रहा है? इंसानियत, पूरी इंसानियत, ओ मैन काइंड। आप अपनी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को दिखाया करें ये आयतें, लुक एट दिस, अल्लाह इज कॉलिंग यू। आपके पास नॉन मुस्लिम मेड्स होंगी घरों में, मुलाजिम होते हैं, कभी उनको महरूम ना रखें। बाज़ दफ़ा इंसान जब किसी का डिपेंडेंट होता है ना, तो यकीन करें कि लालच या वैसे उसके प्रेशर में आके उसकी बात को मान लेता है। तो जहाँ भी अल्लाह की बात की जा सके उसकी ज़रूर बात किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा कोई बात कह के किसी के दिल का दरवाज़ा छोटी सी बात से खुलवा देते हैं। तो क्या करो, या यूहन्नास, ए लोगो, किसको कहा जा रहा है? पूरे ग्लोब पर एक पुकार है। कोई इतना बड़ा माइक्रोफोन होना कि ग्लोब के ऊपर सिरे पे बैठ के कोई कह दे या यूहन्नास, ए लोगो। और आज क्या मुश्किल है, मीडिया यूज़ कर ले, डायरेक्ट टेलीकास्ट कर ले, ब्रॉडकास्ट कर ले, स्काइप पे आ जाएं, कहीं जाके अगर इस पुकार को बोल दो कि या यूहन्नास कद जा अकुमुर रसूल, आ गया बेशक तुम्हारे पास रसूल, बिल हक की, हक के साथ, किधर से आया, मेर रब्बिकुम, कंप्लीट तारुफ रब की तरफ से। कद देखिए तहकीक का है, डेफिनेटली इंग्लिश में लिखेंगे तो इंडीड, श्योरली, शिद्दत है ना। जा अकुम, वो खुद आ गया तुम्हारे पास, तुम्हें नहीं जाना पड़ रहा। मुश्किल लगता है ना, कहीं खुद जाना और किसी का चल के आपके पास आ जाना, बहुत फर्क है दोनों में। कहा वो खुद आ गया, फिर आया जो है वो ऑथेंटिक कितना है, क्या लेकर आया तुम्हारे लिए, बिल हक, हक को लेकर आया, सच लेके आया। और सच में कशिश होती है, इंसान खिंचता है सच की तरफ, और आया किसकी तरफ से, मेरे रब्बी को, रब की तरफ से, बेस्ट, योर क्रिएटर, योर गॉड, योर सस्टेनर, रब, सब कुछ। तुम बस एक काम कर लो, सिर्फ एक लफ्ज है, फामिनो, बस तुम मान जाओ, बस तुम ही मान ले आओ। ऐसे लग रहा है कोई के हमने कुर्सियां भी लगा ली, हमने कमरा भी साफ कर दिया, स्टेज भी सजा दिया, पानी भी रख दिया, फूलों के बके भी रख दिए, हमने हर चीज कर दी, बस अब आप आ जाइए। कितनी ऑनर देते हैं हम किसी को जब ऐसे बुलाते हैं, और किसी से कहा जाओ जरा आके पहले झाड़ू भी लगाना, कुर्सियां लगवाना, फिर बैठ के सुनना, तो मुश्किल होगा ना। अल्लाह ने एक खूबसूरत स्टेज सजा दिया पूरी दुनिया के ऊपर, हुज्जत तमाम करके कहा बस अब फामिनो, आ जाओ। आने वाले या जिनको बुलाया जाता है वो पूछते हैं क्या मिलेगा, क्या आएगा, हम क्यों माने, क्यों फामिनो? तो कहा खैर अल्लकुम, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। उर्दू में अगर आप इसका बहुत ही शुस्ता तर्जमा करें ना इस आयत का, तो क्या बनता है, ईमान ले आओ, इसी में तुम्हारी खैरियत है, जोश है, मानते हो कि नहीं, जोर जलाल है, दो टोक बात है, हतमी बात है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की तरफ से कोई रहनुमाई नहीं की गई, हमें कुछ बताया नहीं गया, बात तो समझ ही नहीं आई, पता नहीं ये कब है, नहीं, अब बहाने खत्म, अब हुज्जत तमाम, रसूल आ गया, मौका मिल गया, अब इल्म ले सकते हो, हिदायत ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। अब कोई ना ले तो क्या करेंगे? आप भी अपने ऊपर लेके सोचिए, कितने साथी आज मुसलमानों के, क्योंकि देखिए ये आयत तो नॉन मुस्लिम पे हुज्जत है ना, आज मुसलमानों में से किसको नहीं पता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, कुरान हदीस सुन्नतें अपनी पीछे छोड़ गए, सबको पता है ना, तो क्या सारे मानते? दस दस करके डिफरेंट मकतबा फिक्र के लोगों से जरा कुरान की चंद आयतें इधर उधर से सुन लें, दस हदीसें सुन लें, तो फिर देखिए क्या हाल होता है। तो हम मुसलमानों के खिलाफ ये हुज्जत है कि अल्लाह तो अब दूसरों को बुला रहा है, तुम खुद नहीं आए। मैं ये बात कह रही हूँ तो मेरे जहन में वही मिसाल आ गई फंक्शन की, घर के ही लोग नहीं आ रहे, लड़की की माँ बाप भाई बहन करीबी चचा ताए ही नहीं शादी में पहुंचे, तो बाहर वालों को आप क्या बुलाएंगे? हमारे कल्चर में ये बात समझ आ गई है ना, यानी पहले कहते घर के आओ, अपने आओ, हम खुद नहीं आते अल्लाह की तरफ, तो बताइए हम दूसरों को कैसे बुलाएंगे? अच्छा, जब हम खुद किसी चीज की तरफ नहीं आते ना, तो दूसरों को बुलाना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कोई किसी को उस जगह दावत देगा जहां खुद नहीं जा रहा? डर तो दिल में ही होगा, अगला पूछेगा अच्छा आपका बारी नहीं, मैं तो नहीं आ रही, आप आइए। खुद ब खुद जुबान लड़खड़ाने लगती है, इसलिए आप देखिए कि जब हम खुद हिदायत पे होते हैं तो हमारे दिल में अर्ज भी होती है। इस वक्त आपके दिल में तड़प आ रही है क्या? आपकी और दोस्तें भी आज आपके साथ आयतें सुनती, वो भी सूरत निसा पूरी कर लेती, वो भी 5 पारों में आपके साथ होती, आती है कि नहीं आती? और अगर आप खुदा ना खासा खुदा ना छोड़ चुकी होती तो आपको पता भी नहीं होना था आज क्या सोने जैसी आयतें चल रही हैं। फर्क है ना? तो किसी को बुलाने के लिए खुद जमना लाजमी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कील है ना, खुद ठुका होगा ना तो उसके साथ आप भैंस भी बांध दें, वो उसको भी पकड़ लाएगा। और कील ही हिल रहा है, वो जो छोटी सी खूंटी है, तो वो भैंस छोड़े बकरी भी बांधेंगे, वो खूंटी को उतार के ले जाएगी। हमें क्यों लोग उचक के ले जाते हैं उसकी बातों में, उसकी बातों में, आज इधर चलो आज इधर जाना है, प्लीज प्लीज, क्यों? हम खिले हुए हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जो अल्लाह को एक कह दे अब बस जम जाए, होगा क्या? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्तों का नज़ुल होगा, खुशखबरियां देंगे, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ना गम ना फिक्र। इस रास्ते में गम फिक्र कोई नहीं है। आपकी तबीयत ठीक हो गई है ना? कहाँ गई वो सारी जमाइयाँ, कहाँ गया वो जेट लॉक? सिर्फ जहन में होता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला, वो कोई ऐसा दिन ना हो कि मेरी दुनिया की किसी नेमत या खैर को पाने के लिए मेरी एक दिन की भी क्लास चली जाए। मैं भारी कीमत देने को तैयार हूँ, अगर मुझे कोई कहे कि आप आज सुबह की फ्लाइट ले लें तो इतने की है, लेकिन शाम की ले लें इससे डबल है, लेकिन आपको लेनी। मैं कहूँगी नहीं, मैं ये क्लास ले के जाऊँगी, शाम की लूँगी फ्लाइट। मेरा रब वैसे तो उसके ही, उसने क्या हमें कहना है? समझ आ रही है बात की? यानी जितना ज़्यादा आप अल्लाह के रस्तों में अपने आप को जमाएंगे, अल्लाह आपके दुख दर्द दूर करेगा। शर्त एक है, पहले जमना है। और जमने से पहले आपको पता है कि कील जिसकी मिसाल दी है खूंटी की, उसको पहले ठोकने के लिए खुद भी तो थोड़े से मार खानी पड़ती है ना। तो कील के, हाँ नहीं, मुझे प्यार से इधर बस कर दो, ऐसे ही पुश कर दो, पुश पिन कर दो, लेकिन मैं हथौड़े नहीं खाऊंगा, तो जमेगा। हम नहीं जमते तो दूसरों को कैसे खींचे? फिर कैसे रोएं कि दूसरे नहीं आते? वो अंदर से हंसेंगे, अंदर से खुद ही कच्चा था। कच्ची चीज के ऊपर आप कभी कोई चीज बांधते हैं? ऊपर हल्का सा पतला सा ऐसे कील लगा के कीमती फानूस आप लटकाएंगे? तो अल्लाह अपना दीन क्यों मेरे जैसे कच्चे लोगों के हाथ में दे? उसके बस बड़े पक्के लोग हैं, मुझे किक आउट करेगा, ठोकर से पीछे कर देगा, चल तू कच्ची है अभी भाग, पक्केगी तो फिर देखेंगे। या फिर कोई मेरे वजन के मुताबिक कोई छोटा सा एक बल्ब लगा देगा, जलता बुझता रहेगा। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे अंदर इस तरह की इस्तकामत दे दे कि हम अल्लाह के बंदे बन जाए। फिर आप देखिएगा जो जीने का मजा है, वल्लाही वो तो जीने का मजा है, सो है मरने का भी मजा है उसमें। जो दुनिया वाले होते हैं ना, वो दुनिया में जीते हुए भी खुश नहीं होते, मेरे गुमान के मुताबिक, बदगुमानी हो सकती है, लेकिन जो अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ के जीते हैं ना, फिर उनकी मौत भी खूबसूरत होती है। आप देखिए कि उनकी मौत इतनी ज्यादा रोमांटिसाइज हो जाती है, इतना उनको अपनी मौत के तذکروں से मजा आता है जैसे किसी दोस्त को मिलने से पहले एक बंदे का हाल होता है। इसीलिए अल्लाह ताला फिर ऐसे नाशुकरों को एक धमकी देते हैं, वइन तकफुरू, फिर अगर तुम कुफर करते हो, कुफर क्या है? नाशुकरी, नाकदरी, शौक से करो, तुम अल्लाह की जरूरत नहीं हो। फइन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, क्योंकि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सब कुछ उसका है और वो अलीम और हकीम भी है। कोई लाडला ना फिर बने कि मेरे बगैर अल्लाह की चलती नहीं है, पूरी नहीं पड़ती, अल्लाह ये अल्लाह वैसा, अल्लाह ये दिस एंड दैट। आप देखिए ये सारी चीज़ों को अगर एक इंसान अल्लाह ताला के और नबी के इस ताल्लुक से देखे तो क्या बात समझ आई है कि नेमतों की ना कदरी ना करो। ये किताब अल्लाह की तरफ से है, ये इन्होंने लिख के दिया कि सूरह यूनुस की आयत 37 में भी आता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है, और सूरह अल अनाम की आयत 155 में भी यही बात है, और हम में से किसी का भी इसमें कोई शक नहीं है कि ये कलाम अल्लाह की तरफ से नहीं है। और जो बात बीच में थोड़ी सी हुई थी, सूरह तकवीर की वो आयतें हैं जिसमें मैंने आपको इशारा देना चाहा था, वो मा हुआ भी कौली शैतान रजीम, ये किसी शैतान रजीम का कौल नहीं है, ये किसी शैतान मरदूद का कौल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। और सूरत मुतफ़िफ़ीन की आयत 9 में आता है, किताबुम मरकूम, ये तो लिखी हुई किताब है। सूरत बुरूज की आयत 21:21 में आता है, बल हुआ कलाम अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान पाक अल्लाह की तरफ से है। और सूरत तारिक की आयत नंबर 13 में आता है, इन्नहु लकौलुन फसल, बेशक ये तो एक फैसला कुन बात है, दो टोक बात है, इसमें कोई कमी नहीं है। सूरत जुमर की आयत 1-2 में आता है कि इस किताब को गालिब बाहिकमत ने उतारा है, यानी इस किताब को हल्का ना समझो। पता नहीं आप क्या सोचते हैं, मुझे तो इस वक्त ऐसे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा नोबल काम है मेरे पास। लेकिन आपको कोई किसी ऐसी जगह ऑफर कर दे काम की कि जो पूरी इंटरनेशनल कंपनी और पूरी दुनिया में उनका सिक्का चलता हो, लोग बैजेस लगा लेते हैं, गाड़ियों के पीछे लिख लेते हैं, हम उस कंपनी का, हम अमेजोन के, हम फलां के फलां के, जिसको अल्लाह के कलाम की हो, फिर क्या उसकी जिंदगी में सिर्फ तलब होगी? करना पड़ेगा ना, कुछ भी करेंगे तो उसके लिए खैर होगी ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का खुलासा है, फरमाए अतलबुल जन्नत बिजुहदकुम, जन्नत को तलब करो अपनी मेहनत के साथ, वहर्रिबू मिनन नारी बिजुहदिकुम, और जहन्नुम से निजात पाओ अपनी मेहनत के साथ। आसान सौदा दोनों नहीं है, आग लग जाए तो वहां से निकलना भी आसान नहीं है। और आप देखिए कि खौफ और उम्मीद बंदे को अमल पे डालती है। बच्चों को पढ़ाते हुए टीचर्स को सिखाते हैं, कभी सजा दो कभी इनाम दो, ये फितरत का बात है। अगर बच्चों को सिर्फ सजा देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर इनाम ही सिर्फ देंगे तो लालची हो जाएंगे। अल्लाह ने हर मुमकिन तरीके से हमारे ऊपर हुज्जत तमाम कर दी। आज अगर किसी को लगे कि आप शाम को फलां जगह पहुंचे तो आपको 10,000 पाउंड मिलेंगे, कितने लोग हैं जो वहां पहुंचने की कोशिश ना करें? बसों में रश, ट्रेनों की हड़ताल, गाड़ियां सीज, रोड ब्लॉक, क्या करेंगे? गैस करेंगे कि वहां तक पैदल पहुंच सकती हूँ, कोई बात नहीं, टांगे थक गई, कोई तकलीफ हुई तो उस 10,000 में से 1,000 लगा के इलाज करा लेंगे, लेकिन चल पड़ेंगे। तो क्या जन्नत इससे बड़ी चीज नहीं है? देखिए, हम सोचते हैं ना कि नहीं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, कैसे पता चले? हमारी मशगूलियात, हमारी मसरूफियात से। मशगूलियात क्या है? शुगल। और मसरूफियात क्या है? सरफ, सरफा या सिर्फ तसरीफ। सारा दिन किस चीज की कोशिशों में रहते हैं, दिल दिमाग के अंदर हमारे क्या बातें हैं? एक सवाल जो इसमें मुफसरीन के बीच में आता है, वो कहते हैं कि अल्लाह ने क्यों खुद शरीयत बना के दी? सारे लोगों को कहता कि मिल बैठ कर एक जाब्ता मुकर्रर कर लो। जैसे आज दुनिया में कई कोशिशें होती हैं ना, कोई लॉ UNO पास कर लेती है, कोई यूनाइटेड नेशंस कर लेगा, या लाइक वो तो एक ही है, लाइक ये यूरोपियन यूनियन कर लेते हैं ना, डॉलर इतने का, पाउंड इतने का, इस मुल्क में आओ जाओ। तो अल्लाह सुबहाना ताला सारे इंसानों को खुद ही चॉइस दे देता कि तुम मिलो और एक शरीयत बना लो। तो इसका जवाब ये दिया गया कि ये तो बड़ा मुश्किल होता, दो मियाँ बीवी मिलकर एक घर का निजाम नहीं चला पाते, 10 दफा तो क्लैश होता होगा बच्चों के ऊपर, वो कहते हैं इनको इधर भेजना इनको, तो सारे लोगों ने तो मिलके करना ही नहीं था। आप एक इदारे में बैठ के 10 लोगों से कहें कि आप मिलके इस इदारे के रूल्स बना लें, और 5 इसके अंदर वर्कर्स, स्टूडेंट्स को, किसी को भी लगा लें, कभी भी कोई रूल नहीं बनेगा। अल्लाह की ये शान है कि उसने हम सबको बना दी, क्योंकि अल्लाह एक है, जहद से पाक है, हालात और वाक्यात से पाक है। इंसान मुख्तलिफ होते हैं, उनके माहौल फ़र्क हैं, इलाके फ़र्क हैं, तो मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ तरीके से मामला करना दुरुस्त नहीं है। एक बड़ा ही खूबसूरत नुकता मुझे लगा इस हिस्से में कि अल्लाह ने हुज्जत तमाम की। ये बात तो पढ़ ली है ना, समझ आ गई है ना। इससे मुफस्सरीन कहते हैं कि हमें भी हत्तुल बसा अपने जाती मामलात में हुज्जत तमाम करनी चाहिए। कैसे? मसलन अगर आप देखिए कि आपको लगता है कि आपकी किसी बात से कोई दूसरा गलत फहमी का शिकार हो जाएगा, तो आप अपनी सफाई पेश करें। एक वाक्य, आप इतकाफ में थे, आपकी बीवी हजरत सफ़िया आपको मिलने आई, वापसी पे आप जब उनको छोड़ने गए तो पास कुछ मर्द भी थे, तो बीवी तो जाहिर है कि पर्दे में थी, उनको तो किसी ने ना देखा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो मेरे साथ मेरी बीवी सफिया है। आपका ये कहना कि मेरे साथ मेरी बीवी सफिया, ये क्या कि आपने अपना उजर दिखा दिया। हम कहते हैं हाँ जो भी समझता समझता जाए, मुझे क्या। नहीं, जहां तक मुमकिन हो लोगों के सामने अपनी बेगुनाही दिखा दें। और वो वाक्य भी आपने सुना होगा, मैंने सुनाया कई जगह क्लासेस में, कि इमाम बुखारी एक दफा कश्ती पे सवार हुए तो उनके पास अशरफियां थी, बातों में एक साथ बैठे साथी को बता दिया कि मेरे पास 100,000 दरहम है या शर्फियाँ जो भी है। उसका दिल ख़राब हो गया, उसने थोड़ी देर में खड़े होकर शोर मचा दिया कि मैं तो, मेरी शर्फियों की थैली घूम गई है। तो उसका ख्याल था कि तलाशी लेने पे जब इमाम बुखारी के पास मिलेगी, लोग समझेंगे मेरी है तो मुझे मिल जाएंगी। ढूंढते रहे, देखते रहे, क्या हुआ, पूरी तलाशी ले ली, कहीं नहीं मिली, चुप करके बैठ गया, चला गया। कुछ अरसे के बाद दोबारा जब उनकी इमाम बुखारी से मुलाकात हुई, कहने लगा मुझे एक बात तो बताएं, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जब आपके पास है ही नहीं थी हजार अशरफियां तो आपने क्यों कहा? कहा मेरे पास थी। कहा फिर जब तलाशी ली तो निकली क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं कि जब तेरी नीयत खराब हुई, तूने कहा मेरी थैली गुमी है, तो मैं समझ गया कि लोग मेरे पास पाएंगे तो कभी नहीं मानेंगे मेरी है, तो मैंने वो थैली पकड़ के समंदर में फेंक दी। ये है उजर तलाश करना, कि इल्म वालों को और दीन वालों का अपना दामन कितना पाक रखने की जरूरत होती है। पहले तो लोग कहते नहीं नहीं कर ले, कुछ नहीं होता, ले 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 ले, पकड़ ले पकड़ ले, बाद में वो कहेंगे देखा ये ऐसे होते हैं दीन वाले, ये दावतें खाते हैं, ये तोहफे लेते हैं, ये काम करते हैं। तो हर मुमकिन सूरत में अपने आप को बहुत ज्यादा अलग और पाक रखने की जरूरत है। इसके बाद अब अगली आयतें जो हैं, खास तौर पे इसमें अहले किताब के साथ अल्लाह सुबहान तआला का बयान है, और किस मामले में है कि दीन में कमी बेशी कैसे होती है, बहुत अहम हिस्सा जिसको सुनना चाहेंगे हम और पढ़ेंगे। मैं चाहूंगी कि इसकी तिलावत थोड़ी सी सुनवाइए।
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما
الله أكبر. चलिए देखते हैं आयत 171 से। या अहलल किताब, ए अहले किताब, ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गलूब ना किया करो। गलूब को उर्दू में आप मुबालगा लिख लीजिए, यानी कमी या बेशी ना किया करो। और क्या ना करो? वला तकूलू अलल्लाही इल्लल हक, और अल्लाह पर हक के सिवा कुछ ना कहो। अल्लाह सुबहान तआला की ज़ात, उसके ऊपर ना हक बातें ना किया करो। और बाकी रह गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में तुम बातें करते हो, तो उनका मुकाम क्या था? इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम, बेशक मसीह तो कौन है? ईसा इब्न मरियम, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल है। यानी तुम ईसा के बारे में जो बातें करते हो वो दुरुस्त नहीं है। ईसा की शान क्या है? नंबर वन लिख लीजिए, रसूलुल्लाह के ऊपर, और दूसरी व कलीमतुहु, और उसका कलेमा भी है, कलाम से कलीमा, और तीसरी बात उनके बारे में कहेगी अलकाह इला मरियम वरूहुम मिनहु, जिस कलमे को उन्होंने मरियम पर इल्का किया और उसकी तरफ से एक रूह भी थे। अब ये सारी बातें, जिसमें दो तीन बहुत ही ऐसे लफ्ज़ हैं कि जिसको हम थोड़ा समझें ना तो मुश्किल होगा, آیت پوری کریں پھر اس پہ ہم بات کریں گے. کرو کیا؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پہ. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ, اور یہ نہ کہا کرو کہ تین ہے, یعنی ٹرینیٹی کی بات نہ کرو, بلکہ انتخو, باز آ جاؤ, ہوگا کیا؟ خیر لکم, تمہارے حق میں بہتر ہوگا. یعنی تثلیث کا عقیدہ پیش نہ کرو, یہ تمہارے حق میں درست نہیں ہے, ٹھیک معاملہ رکھو, اس چیز کو اپنے عقیدے سے نکال دو. تو پھر صحیح عقیدہ کیا؟ انما اللہ الہ واحد, جان لو کہ اللہ تو بس ایک ہی ہے, سبحانہ, وہ پاک ہے اس سے. اَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ, کہ اس کی کوئی اولاد ہو, کیونکہ اولاد کی ضرورت کیا اس کو؟ لوگوں کو تو اولاد اپنی کمی بیشیاں پوری کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے, لیکن اللہ کی ذات کو اولاد کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ خود کارساز ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے تمہاری ان باتوں کی, یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے پھرو. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خود اپنی بات سمجھائی بھی ہے. اب ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل کتاب کے خاص طور پہ بگاڑ کی وجہ بیان کی گئی ہے, کہ پچھلی آیت میں دعوت کیا تھی؟ کہ تمہارے پاس ایک رسول آ گیا حق کے ساتھ, بس ایمان لے آؤ, تمہارا کام یہ تھا کہ اس کی بات کو مان لو. لیکن یہ دعوت یہود اور نصارہ نے قبول نہ کی. یا اہل الکتاب سے مراد جہاں یہود اور نصارہ ہیں, لکھ لیجئے. لا تغلو, تغلو کا لفظ جو ہے نا غلوف سے ہے, غین لام واو اس کا روٹ ہوتا ہے, زیادتی کو کہتے ہیں, افراط حد سے بڑھنا. دیکھیں دین ایک مکمل چیز ہے, نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ. نصارہ کی گمراہی کی وجہ بھی غلوف تھی اور یہود کی گمراہی کی وجہ بھی غلوف تھا. فرق کیا تھا؟ یہود تفرید کا شکار ہو گئے تھے, تفرید کے کمی, اور نصارہ افراد کا. اردو میں ہم بولتے ہیں افراد و تفرید نہ کرو, تو افراد کیا ہے؟ جیسے اس گلاس میں اتنا پانی ہے نا اس وقت, یہ دیکھیے ہاف گلاس ہے. آپ سوچئے کہ اللہ کا دین یہ تھا, یہود نے کیا کیا؟ اس میں سے کچھ کم کر کے سکویز کر کے اس کو چھوٹا کر دیا, اور نصارہ نے کیا کیا؟ اس میں اور دو گھون ڈال کے اس کو بڑھا دیا. تو پہلا تفرید, دوسرا افراد ہے. اردو میں ہم یہ لفظ بولتے ہیں فرتے مسرت سے, سنتے فرتے جذبات, فرتے غم, افراد و تفرید, یہ سارے لفظ اردو میں آتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہود اس لیے مبغوث ہوئے, یعنی ان پہ غضب آ گیا, مغضوب ہو گئے, کہ علم آنے کے بعد انہوں نے عمل نہ کیا. اور نصارہ اس لیے دولین میں شامل ہو گئے کہ بغیر علم کے عمل کرنا شروع کر دیا. دونوں ہی تباہی ہیں. کچھ لوگ اس لیے دین پہ نہیں آتے کہ پڑھا تو عمل کرنا پڑے گا, وہ دوال بننا چاہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں پڑھ لیا لیکن اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں. تو اصل شان کیا ہے؟ کہ جو بات معلوم ہو جائے بندہ اس پہ عمل کر لے, اس سے اس کی بچت ہو جائے گی. اب یہاں حضرت عیسیٰ کی ذات کو پیش کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کیا تھے؟ رسول اللہ تھے. یہ بات تو سب کو واضح ہے نا, اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے, سب کو پتا اللہ کا رسول تھا. کلیمتہ سے کیا مراد ہے اور روح منہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. جملہ لکھ لیجئے, عام انسان ایک گریجول مرحلے سے گزر کے پیدا ہوتا ہے نا بچہ, وہ سارے مراحل بچے کی پیدائش سے اس کے پیدا ہونے تک کے جو ہیں, یہ ایک پروسیس ہے. عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے تھے, ٹھیک ہے, اس لیے ان کو کلمت کہتے ہیں, کلیمتہ اللہ کا کلام, ٹھیک ہے. القاہ الی مریم, جو اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا. کیسے؟ و روح منہ, دوسری صورت کیا تھی ان کی؟ روح. کیسے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری تھی. یہاں جو روح کا لفظ ہے نا, یہ حضرت جبرائیل کی طرف بھی ہے. عام حالات میں بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے قریب ہو جاتا ہے نا, تو حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس کے اندر ایک روح پھونکتے ہیں, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں جان پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے نصیب کی باتیں لکھتے ہیں. اور یہ کام جبرائیل کے تھرو ہوتا ہے. وہی کام جو عام بچوں میں ماں کے یوٹرس میں ہوتا ہے حمل ٹھہرنے کے بعد, بی بی مریم کے ساتھ یہ معاملہ ابتدا میں ہو گیا. بس اتنی سی بات ہے, بات سمجھ گئے. یہ ہے روح منہ, کہ بی بی مریم کے رحم میں جو حمل ہوا وہ اللہ کے کلمہ کن کی وجہ سے ہوا. بچے کی پیدائش کے طبعی عمل میں ایک حصہ ماں کا ہوتا ہے, ایک باپ کا ہوتا ہے. حضرت مسیح کی ولادت میں ماں کا حصہ تو پورا تھا, باپ کا نہیں تھا. بی بی مریم کو حمل ہوا, 9 مہینے اپنے ماں کے پیٹ میں رہے. بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کی. اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ میں سب کچھ کرتا ہوں. اور روح منہو کیوں کہا؟ کیونکہ سب انسانوں میں اللہ کی روح ہے. آگے ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں آدم کے تذکرے میں, نفخت فیہ من روحی. تو پھر تو نعوذ باللہ آدم بھی اللہ کے بیٹے ہی ہو گئے اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, تو روح سب کی طرف اللہ کی طرف سے آتی ہے, مختلف ہوتی ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی. آپ دیکھیے کہ اب روح ایک نورانی چیز ہے, ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. جتنا قرآن سنت میں اس کو بتا دیا. ان دو باتوں کو بیان کرنا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ حضرت عیسیٰ کی شان تھی. لیکن نصارہ نے کیا کیا؟ ان کو ابن اللہ اور تثلیث اور ثالث ثلاثہ کر دیا. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ غور و فکر نہ کرو. فآمنوا باللہ ورسلہ, اللہ اور اس کے رسولوں پہ مان جاؤ, ایمان لے آؤ. ولا تقولوا ثلاثہ. ثلاثہ کیا ہے؟ جس کو آج اردو میں تثلیث اور انگلش میں ٹرینیٹی کہتے ہیں. ٹرینیٹی ایک نہ سمجھ آنے والی کہانی ہے جو کہ اہل کتاب نے گھڑی ہوئی ہے. تھری آف ون اینڈ ون آف تھری, ایک ہی وقت میں تھری, ہولی گوسٹ اینڈ میری اینڈ جیزس مل کے خدا بنتے ہیں. کبھی تیسری طرح ثلاثہ اقلیم, یعنی اتنی لمبی باتیں اس میں. سورہ مائدہ کے اینڈ پہ بھی یہی مضمون آئے گا. پھر یہاں کیا پتہ چلا کہ ایسی باتیں نہ کرو, یہ بیکار باتیں ہیں. وہاں آپ کو لکھاؤں گی ہسٹری ان کی. جیسے کل ہم نے سود کی ہسٹری پڑھی تھی نا, بینکنگ کی, تو سورت مائدہ کے اندر آخر میں انشاءاللہ ہم ٹرینیٹی کی پوری ہسٹری پڑھیں گے. کہ آج ہم مسلمان تو ان لوگوں کو دیکھ کے بھٹکے ہیں, تو یہ کس کو دیکھ کے بھٹکے تھے؟ وہ یونانی تھے. گریکس کو دیکھ کر ان کے اندر شرک آیا, اور انہوں نے ٹرینیٹی کی باتیں کر کے یہ کر دیا کیسے نہ کرو. اور اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ایک ہے. اب یہ بات تو اتنی سمجھ آ گئی کہ تمہیں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں بنانا ہے؟ اللہ کے لیے تو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے. اور رہ گئی بات کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو جبکہ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ بننے میں کوئی شک نہیں ہے. اگلی آیت ساتھ لیں, پھر اس پہ ہم اکٹھی بات کر لیں گے.